सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सवसाहूणं सयलो वसगणिवः संवरणेने वजसफिट्टन्ति पाशसतसणमिं पाषणयो अम्परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है अपने। हम यहाँ पृष्ठ संख्या 142 पर आ गए हैं। ये जो 6 प्रकार के कर्म है उस पर अभी हम अंतर की प्ररूपणा देख रहे हैं। कोई प्रश्न है? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, अलग अलग लेंगे तो कितना होता है? अलग अलग लेंगे। हाँ, यही प्रश्न है ना। देखो, बादर एकेंद्रियों में कितना काल घूमता है जीव? असंख्यात कल्पकाल, यानी सूचंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र जो असंख्यात कल्पकाल होते हैं। और अकेले बादर पर्याप्त 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 में घूमेगा तो संख्यात 1000 वर्ष, और लगातार अपर्याप्त 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 में घूमे तो अंतर्मूर्त। बराबर है। तो ये बीच बीच में पर्याप्त अपर्याप्त भव करता रहेगा, पर्याप्त में से अपर्याप्त, अपर्याप्त में से अंतर्मूर्त वापस पर्याप्त में जाएगा, फिर वहाँ अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण वो काल घुमाएगा, फिर अपर्याप्त होगा। इस तरह से कितना काल है, टोटल काल कितना होगा बादर एकेंद्रियों का? तो असंख्यात लोक प्रमाण काल, ख्याल है ना। सूक्ष्म की भी बात ऐसी है, सूक्ष्म में बादर या सूक्ष्म अलग अलग अंतर्मूर्त है। ये सूक्ष्म में असंख्यात लोक था ना, और वहां बादर एकेंद्रियों में असंख्यात कल्पकाल था, असंख्यात कल्पकाल था। हाँ, अच्छा, आपका प्रश्न है असंख्यात कल्पकाल और असंख्यात लोक प्रमाण, इसमें क्या फर्क है? दोनों को ही, एक तो उन्होंने बताया है समयों की अपेक्षा ही काल बताए, काल की अपेक्षा ही काल का वर्णन किया। कहाँ पर? कल्पकालों को बताए तब। और जब असंख्यात लोक कहा तो प्रदेशों की अपेक्षा काल को कहा, तो उसमें कितना डिफरेंस हुआ पता नहीं चलता ना। एक को काल से ही बताया, एक को क्षेत्र से बताया, तो काल को जो बताया है उसको भी हम क्षेत्र में ट्रांसफर करेंगे। तो असंख्यात कल्पकाल कहो या अंगुल के असंख्यातवे भाग कहो, एक ही बात है। तो अंगुल बड़ा के लोक बड़ा, लोक कितना बड़ा? पूरा लोक। और अंगुल यानी, हाँ, ये जो जितना है अभी एक उंगली, तो उसका भी असंख्यात भाग, और वहां लोक को भी असंख्यात गुणा करो, नहीं कितना डिफरेंस है। तो सूक्ष्म उसको तो मालूम है, उन्होंने पहले सुना हुआ है। हाँ, यानी सूक्ष्म एकेंद्रियों के पर्याप्त में रहो या अपर्याप्त में रहो, उनका काल अलग अलग अगर लेते हैं तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त देखा था ना हमने, सूक्ष्म पर्याप्तों का भी काल अंतर्मूर्त ही है ना। पर्याप्त होंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो आपका प्रश्न हो गया। हम 142 पर नीचे की लाइन में आते हैं। बादर एकेंद्रीय पर्याप्त अपर्याप्तों की बात देखी थी, सूक्ष्म की बात अभी देखेंगे हम। 142 पेज नीचे की लाइन, सूक्ष्म एकेंद्रियों के, यानी अभी सूक्ष्म एकेंद्रीय सामान्य लिए पर्याप्त अपर्याप्तों को मिलकर प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम असंख्यात लोक प्रमाण है। ये अधक कर्म का अंतरकाल कैसे निकाला था हमने? किसी विशिष्ट जो हमने देखी थी मारगणा, उसमें रहने की उत्कृष्ट स्थिति हुई कि बार बार लगातार मरकर उसी में जन्मता रहे, तो शुरू में तीन समय के बाद वो अंतर शुरू हुआ और फिर लास्ट, यानी दो समय तक वो तो था और तीसरे समय में अंतर शुरू हुआ और अंतिम एक समय में उसको ग्रहण किया, तो वो अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों की बात करेंगे अभी। पहले सामान्य में लिया था, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की, वो जो दिख रहा है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। यानी सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों की स्थिति कितनी है? लगातार पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म, तो भी अंतर्मूर्त है। एक पर्याप्त भव जो है वो भी अंतर्मूर्त वाला है और लगातार सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों के भव होंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होंगे, वो पलटकर अपर्याप्तों में चला जाएगा। अपर्याप्तों में भी अधिक काल कितना बीत सकता है? अंतर्मूर्त, फिर पर्याप्त में आएगा। तो पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा करता रहे तो असंख्यात लोक प्रमाण काल सूक्ष्म एकेंद्रीय में रह सकता है जी। इसी प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तकों के भी जानना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो अंतर्मूर्त वाला ही है, अलग कोई नहीं है, इसलिए उसको वैसा ही समझना है। द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के तथा उन्हीं के पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम संख्यात हजार वर्ष। ये संख्यात हजार वर्ष जो लिखा है वो द्विंद्रिय या तीनिंद्रिय या चतुरिंद्रिय में अधिक से अधिक रहने का काल है। पर्याप्तों की अपेक्षा कहाँ है? अपर्याप्तों में तो अंतर्मूर्त कहेंगे। हाँ, देखो पहले सामान्य में जब कहा तो जिसकी बड़ी होगी उसको ही कहेंगे, तो पर्याप्तों की अपेक्षा उसी का है। पर्याप्तों के लिए कितना है? तो संख्या हजार वर्ष। अब अपर्याप्तों को अलग कहेंगे, द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीनिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम। अभी क्रम से ने तीनिंद्रिय के लिए 80, सॉरी द्विंद्रिय के लिए 80, तीनिंद्रिय के लिए 60, चतुरिंद्रिय के लिए 40 और पंचेंद्रिय के लिए 24 अंतर्मूर्त, यानी उनके 24 भव हो गए। पंचेंद्रिय के 24, हाँ अंतर्मूर्त, बड़े अंतर्मूर्त वो सब आ जाएंगे। तो ये 24 कौन कौन से हैं बोलो? हाँ बरोबर, संगी तीरियंच, हाँ संगी के 8, असंगी के 8 और मनुष्य के 8। पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहा है ना, लास्ट में किसको था? पंचेंद्रिय पर्याप्तम को। तो ये 24 इस अपेक्षा से है। पंचेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर है। ये पंचेंद्रियों का जो पंचेंद्रियों में जो रहने का काल है उसको लिया। यहां पर पंचेंद्रियों में उत्कृष्टपणे रहने का काल लिया। इरियापथ कर्म का अंतरकाल कितना है? ये पंचेंद्रिय लिए ना, इसलिए इरियापथ का पूछा। ये पंचेंद्रिय ने वो सामान्य की बात है, यहाँ अपर्याप्तों की अलग से बताई थी। इरियापथ कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य का अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर है। इरियापथ में एक समय कैसा घटित होगा? अंतर की बात है, काल की नहीं। अंतर करके एक समय में वापस लौटना चाहिए। काल तो घटित होता है, 11वें में गया और मर गया, और वो फिर देव गया, देव में गया तो भी पंचेंद्रिय रहा। काल तो घटित होगा, अंतर नहीं घटित होगा। प्रेरणा बेन ख्याल में अंतर ने वापस उसमें आना चाहिए। देखो, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। ये अंतर्मुहूर्त हमने कैसे देखा था? यानी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा और दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ा। शपक श्रेणी चढ़ेगा तो भी वो तो अंतर तो घटित होगा ही ना। उपशम श्रेणी उतर कर फिर शपक चढ़े, यानी दोबारा श्रेणी चढ़ने वाले के होगा। और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर है। अभी उसको समझाएंगे। यानी ये पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति है। पंचेंद्रियों की त्रसों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो हम कहते हैं साधिक 2000 सागर। अकेले पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में घूमेगा तो कितना है? हाँ, तो ये पृथक्त्व कोटि पूर्व कोटि पृथक्त्व और 1000 सागर, अधिक 1000 सागर। तो इसमें चल रहे ना, इरियापथ है, इरियापथ की बात है। हाँ, दोनों ले सकते हैं सामान्य। तो शुरू में तो मनुष्य भाव लेना, बाद में वो तो अन्य भाव सब ले सकते हैं, बराबर है? क्योंकि अभी यहाँ बताएंगे 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक एकेंद्रिय जीव एकेंद्रिय में गया है। सत्ता कितनी है? 28 की। हाँ, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। एकेंद्रियों में भी ये पूर्व कोटि की आयु, इतनी लंबी आयु बांधी है तो वहां उसके योग्य परिणाम हुए होंगे कि नहीं? हमके तो लगता है कि वो मन के बिना कैसे शुभ भाव करता होगा। गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। सक के ऊपर बिंदी है, स्पष्ट करना, स्पष्ट करो। देखो, एकेंद्रिय से जीव आया है और 8 साल में तो संयम भी ग्रहण किया उसने। क्षयोपशमिक से, वेदक यानी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। संयम धारण के यानी पहले से एकदम सातवें गुणस्थान में गया, फिर छठा सातवां करता रहेगा ना। अनंतर अनंतानुबंधी की वो धी बराबर करना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके तथा दर्शन मोहनीय को उपशमा कर फिर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान के हजारों परावर्तन करके क्या किया उसने? पहले संयम प्राप्त हुआ, वेदक समय दृष्टि था, 28 की सत्ता वाला है ना, तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर दिया, तो कितनी सत्ता हो गई उसकी? 24 की। उसके बाद क्या किया? द्वितीयोपशम किया उसने, और फिर छठे सातवें में हजारों बार परिवर्तन करके अपूर्व उपशमक पहले द्वितीयोपशम किया, द्वितीयोपशम करके एक अंतर्मुहूर्त तक वो छठे सातवें तक हुआ और उपशम श्रेणी चढ़ा। कौन सी? नहीं नहीं, वो तो सातिशय अप्रमत्त हुआ, वो तो बाद में, उसमें फिर वो तीन करण मानता है ना, तो द्वितीयोपशम, तो द्वितीयोपशम करने के बाद फिर हजारों बार छठा सातवा पहले तो किया ही होगा, जब संयम धारण किया तो हजारों बार किया है उसने, फिर अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के बाद भी अंतर्मूर्त रुका होगा, तो ये तो इसमें नहीं बताया है। मेन मेन चीजें बताई, बीच बीच में जहां अंतर्मूर्त रुकना पड़ता है, हजारों बार छठा सातवा होता है, वो तो होता ही रहता है। हाँ, और फिर उपशम श्रेणी चढ़ा, अपूर्व उपशमक, अनिवृत्ति उपशमक, सूक्ष्म उपशमक और उपशांत कषाय हुआ। यहां इरियापथ कर्म का प्रारंभ दिखाई दिया, कहां पर? ग्यारहवें में आते हैं। फिर सूक्ष्म सांप्राय होकर वो म और प लगाना, प को म लगाना, या सा पर बिंदी लगाना, कैसे भी सूक्ष्म सांप्राय होकर उसका अंतर किया। ग्यारहवें से दसवें में आते ही अंतर शुरू हुआ, और पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर प्रमाण काल तक उसका अंतर करके अंतिम पूर्व कोटि के काल में अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर क्षीण कषाय हुआ। पूर्व कोटि पृथक्त्व में अलग अलग संख्या आती है, जैसे बीच में हम देखते ना मनुष्यों में भी पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा था, तो वहां तो पहले 24 और बाद में 24, फिर 48 को, और उसमें से एक भोगभूमि के लिए कम करेंगे तो 47 हो जाएंगे, भोगभूमि को नहीं लेंगे तो 48 हो जाते हैं। तिरियंचों में संगी असंगी के करेंगे तो वहां पर तो 95 संख्या हो जाती है ना, 96 में से एक कम करेंगे तो 95 हो जाती है। तो इस सबको ये पृथक्त्व कोटि पूर्व कहा, या पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा, यानी हर एक भव पूर्व कोटि वाला लिया। पृथक्त्व में कुछ बहुत से जगह तो 7 से 8 या 3 से 9 के लिए पृथक्त्व कहते हैं, परंतु यहां वो अर्थ नहीं लेना। तो यहां पंचेंद्रिय कहा, तो उसमें ये सारे ही भव हो गए, मनुष्यों के, तिरियंचों के, जो मैक्सिमम पॉसिबल पंचेंद्रियों में कितने होते हैं, बीच बीच में देवों के, नारकियों के भी ले लेना, 1000 सागर है ना, मनुष्य तिरियंच देव नारकियों के पंचेंद्रियों में ही रहा वो ये काल होता है टोटल। आपका प्रश्न है, क्षपक श्रेणी के पहले उपशम श्रेणी चढ़ना जरूरी है क्या? कोई डायरेक्ट चढ़ सकता है कि नहीं सकता? तो चढ़ सकता है। यहाँ हमको इरियापद पहले एक बार प्राप्त किया था, और दोबारा वो प्राप्त करता है वो दिखाने के लिए बताया। इस प्रकार गर्भ से लेकर 8 वर्ष और 9 अंतर्मुहूर्त कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, अपनी उत्कृष्ट स्थिति ने पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति अंतरकाल प्राप्त होता है। तप कर्म का अंतरकाल भी इसी प्रकार है। अभी तप में वो तो इरियापत में तो 11वें तक जाना पड़ा, तब तो उसके पहले संयम ग्रहण करते उसका तप कर्म शुरू हुआ था, और फिर वापस वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो तप कर्म का अंतर भी शुरू हो जाएगा। इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अंतरकाल 8 वर्ष और 2 अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर प्रमाण है। यानी उसको ये तप कर्म छूटने में और शुरू में इतने ज़्यादा अंतर्मूर्त नहीं लगते, वहाँ तो 8वां 9वां 10वां ये अनंतानुमदिक विसंयोजना करने वाला, उसके बाद विश्राम वाला, दर्शनमुखी जो उपशमना करने वाला, उसमें अंतर्मूर्त बढ़ते हैं उसके। अब आगे क्रियाकर्म का अंतरकाल, पंचेंद्रिय और क्रियाकर्म का अंतरकाल करना है। यानी एक बार समय तो होके छूटा और वो पंचेंद्रियों की स्थिति के अंत में फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त किया, तो क्रियाकर्म का अंतरकाल होगा। नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल, उद्धव जैसा दिख रहा है, जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। प्रतिभाता, जघन्य अंतर कैसे होगा? सम्यक तो कभी एक समय के लिए नहीं होता। हाँ, तो किसका होगा वो मिथ्यात्व का अंतर हुआ। हाँ, तो समय हमको क्रियाकर्म का अंतर कैसे करेंगे हम? कोई समय दृष्टि था वो अंतर मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया और वापस। हाँ, नहीं नहीं, क्रिया चौथे कर्म से है, चौथे। हाँ, दोबारा समय तो हो जाएगा। नहीं, जो जिसने बहुत दृष्ट मार्ग वाला जो है उसकी अपेक्षा वहाँ पर, फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं, संयम वाला जल्दी आएगा या नहीं। हाँ, देखना। मैं यहाँ तो दूसरा ही कुछ बताए। जघन्य काल देखो, अंतरम तो भी होगा, पर यहाँ दूसरा छोटा अंतर्मूर्त और एक लिया। देखो, यहाँ पढ़ने से पहले इसलिए हम विचार करते कि हमें सोचे ना थोड़ा, पढ़ने के बाद तो हाँ 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 ठीक है ऐसा लगता है। अब यहाँ और कोई बताया, देखो, कोई एक मनुष्य अप्रमत्त होकर अपूर्व संयत हुआ और क्रिया कर्म का अंतर किया। यानी पहले संयत था, संयत में से 8वें में जाते ही क्रियाकर्म का अंतर शुरू हुआ। क्योंकि वहां क्रियाकर्म नहीं है, क्रियाकर्म 4थे से 7वें तक है, वहां तप कर्म है। हाँ, तो निद्रा प्रचला की बंदे विच्छित करके मरा, ऐसा क्यों कहा? बहुत अच्छा है। 8वें के पहले भाग में किसके उपशम श्रेणी के, चढ़ने वाले के उतरने वाले के, चढ़ने वाले के। तो चढ़ने वाले के उपशमक, चढ़ने वाला जो है उसके 8वें के पहले भाग में मरण नहीं है, तो ये निद्रा प्रचला को क्यों बीच में लाया? हाँ, ये पहले भाग की बंदे विच्छित होती है ना, 8वें गुणसांग के 7 भाग करेंगे, पहले भाग में निद्रा प्रचला की बंध विच्छित होती है, यानी पहले भाग के अंतिम समय तक निद्रा प्रचला का बंध है, बाद में बंध नहीं है, तो उसका पहला भाग, तो पहले भाग में मरण नहीं होता। अभी इसकी बंध विच्छित हुई, यानी पहला भाग हो गया, अभी उसका मरण हो सकता है। 6ठे भाग के अंत में वो 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित होते हैं और लास्ट में 4 प्रकृतियों की, इसलिए यहाँ वो बंध विच्छित लिया निद्रा प्रचला की। मरकर कहाँ गया? देव में। गुणस्थान कौन सा होगा? 4था। क्रियाकर्म शुरू हुआ ना। हाँ, अंतरकाल प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्रिया किया हुआ है, क्रियाकर्म का जघन्य अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। ये अंतर्मूर्त भी कितना छोटा है ना, अपूर्वकरण का 7वें से भी 8वें का वो अपूर्व अंतर्मूर्त छोटे छोटे होते जाते ऊपर, और उसके भी 7 भाग करके उसमें से 1 भाग लिया है। उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर प्रमाण है। क्योंकि ऐसे शुरू में एक बार किया, फिर मिथ्यात्व में चला गया और लास्ट में उसने प्राप्त किया। 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक विकलेंद्रिय जीव सम्मूर्छम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि सम्मूर्छमों में जल्दी सम्यक तो प्राप्त करता है और सम्यक तो प्राप्त करके छूटेगा, इसलिए उसका अंतर बढ़ेगा। पहले जब हमने दूसरी बातें देखी थी ना, तप कर्म और इरियापत, उसमें तो सम्मूर्छम को नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? हाँ, मनुष्य चाहिए ना, ये तो तिरंच की बात है। सम्मूर्छम जो सम्यक तो प्राप्त करने वाला, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, उसमें एक अंतर्मूर्त गया, विश्राम करके एक और अंतर्मूर्त गया, विशुद्ध होकर और एक अंतर्मूर्त, संवेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, तो तभी वो क्रियाकर्म शुरू हुआ। उसका एक अंतर्मूर्त तक रहा, ये चौथा अंतर्मूर्त। यहाँ क्रियाकर्म की आदि दिखाई दी, फिर सबसे अल्प अंतर्मूर्त काल तक क्रियाकर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो उसका अंतर किया। क्यों? ये भोगभूमि के थोड़ी है, भोगभूमि में सम्मूर्छन होता ही नहीं है। आप जो कृतकृत्य वेदक की बात कर रहे हैं, वो कृतकृत्य वेदक तिर्यंच कहाँ उत्पन्न होते हैं? भोगभूमि में। हाँ, और ये तो है कर्मभूमि के तिर्यंच की बात है, सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, तो वो तो अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। और गर्भज होते हैं उनके, तो वो तो 2 मास और कुछ मुहूर्त। अनंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर प्रमाण काल तक भ्रमण करके अंतिम भव को ग्रहण करते समय पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अनंतर अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रियाकर्म का अंतरकाल लब्ध होता है। अनंतर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और एकेंद्रिय हो गया। एकेंद्रिय में क्यों भेजा? पंचेंद्रियों का काल पूरा किया। पहले भी वो कहां से आया था? विकलेंद्रियों में से आया था। संयम के साथ लिया है, और उपशम का काल घटाने के लिए और अंतर ज्यादा लेना है। हाँ, श्रेणी की बात नहीं है, उपशम सम्यक्त की बात है। यहाँ क्रिया कर्म लिया है, यानी उपशम सम्यक संयम को लेने का, उसका उपशम का काल छोटा होता है, इसलिए उपशम सम्यक का भी जघन्य उत्कृष्ट काल होते हैं ना, अलग अलग। और वो उसको भी काल घटाने के लिए वो सासादन में गया, और फिर सासादन में मरकर एकेंद्रिय में चला गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। इसी प्रकार ये सासादन वाला एक समय वाला मरकर गया होगा ना, कि कितना गया होगा? नहीं नहीं सासादन में जाकर मरा ना, एक समय वाला होगा। मैंने ऐसा, हाँ, 6 आवली तो उपशम का काल घटेगा, परंतु जल्दी मरेगा ही नहीं ना। देखो, सासादन के शुरू शुरू में मरते हैं तो देव में जाते हैं, और थोड़ा काल बीत जाए तो मनुष्य में जाते हैं। हाँ, इमीडिएट मरने वाले तो ऐसा उसमें भी है, कितना काल बिता कर कहाँ जाता है, ऐसा भी है उसमें कुछ। इसी प्रकार इसलिए ने उसका भी वो त्रस के भी कब पूरी ये एकेंद्रिय में गया इतना ही बताना है उनको बस, यानी वो शासादन का काल बढ़ा सकते हैं ना वहां पर। इन्फरेंस मैंने दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछी, इसके साथ कुछ नहीं लगता है। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्त कर कम, पहले चार अंतर्मूर्त दे लिए थे हमने और अंत का एक अंतर्मूर्त, अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त तक में भी कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जहां पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल काल कहा है, वहां 100 सागर पृथक्त्व कहना चाहिए। यानी पृथक्त्व 100 सागर, कितने ही 100 सागर, यहां कितने ऊपर था 1000 सागर प्लस कुछ, इसमें पृथक्त्व 100 सागर मान लेते 300 से लेकर 900 सागर पर्याप्तकों में, और बीच में अपर्याप्त करता रहे तो थोड़े ही बढ़ते हैं। ये इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। अब काय मार्गणा, काय मार्गणा के अनुवाद से, काय मार्गणा में अभी ये षट कायिक की बात करेंगे, पांच स्थावर काय और एक त्रस काय। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल। अभी इन चार कायिकों की बात चल रही, उत्कृष्ट अंतरकाल कितना होगा? तो कहते हैं हाँ, तीन समय कम असंख्यात लोक प्रमाण है। बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक और बादर वायु कायिक जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, जो कितना है हमने देखा था, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों के बराबर है, यानी असंख्यात कल्पकाल प्रमाण है। ये बादर एकेंद्रियों की बात चल रही है ना। वनस्पति कायिकों में निगोद भी आते हैं ना, और उसका उत्कृष्ट काल लंबा हो जाता है, जिसका समान है उसको एक साथ बताते हैं। उन्हीं बादर पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम 1000 वर्ष है। संख्यात नहीं है, ऊपर क्या लिखा है, संख्यात 1000 हमने अभी तक देखा था। उपकस्येन ति समगुणानि संख्येज्य वत्स सहस्राणि, ऊपर आया देखो, संख्यात 1000 वर्ष चाहिए। तीन एक के बदले संख्यात करना, ऊपर 3, 3, 6, 2, 8 मिला। उपकस्येन ति समगुणानि संख्येज्य वत्स सहस्राणि, ऊपर का रेफरेंस प्राकृत में। उन्हीं बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तकों के, अभी अपर्याप्तों की बात है, पर्याप्तों में बता दिया संख्या 1000 वर्ष, दोनों को मिलकर कितना देखा था हमने, असंख्यात कल्पकाल, अकेले पर्याप्तों के संख्यात हजार वर्ष, और अकेले अपर्याप्तों का कितना होगा? अंतर्मूर्था। उन्हीं बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। ये बादर की बात हो गई। अब सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक और सूक्ष्म वायु का एक जीवों के अंतरकाल पृथ्वी का एक जीवों के समान है। पृथ्वी का एक यानी सामान्य में, यहाँ सूक्ष्म पृथ्वी का एक का पृथ्वी का एक के समान है, क्योंकि हमने पृथ्वी का एक का सामान्य से भंग देखा ना। देखो पहले लिखा था हमने, सामान्य में देखा था हमने असंख्यात लोक वाला, वो जो ज्यादा था उसी की अपेक्षा सामान्य में लिया था, क्योंकि बादर का तो हमने असंख्यात कल्पकाल है या अंगुल का असंख्यात अभाग है और सूक्ष्म का ही असंख्यात लोक है, उसी अपेक्षा वहां भी असंख्यात लोक कहा था सामान्य पृथ्वी का एक में, इसलिए यहाँ भंग न बताकर पृथ्वी का एक के समान है कहा। उन्हीं सूक्ष्म अभी पर्याप्त और अपर्याप्त में अलग बताएंगे, उन्हीं सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के दोनों को एक साथ लिया, क्योंकि दोनों का ही वो काल अंतर्मूर्त घटित होगा। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। ये वनस्पति का एक को छोड़ा था ना अभी लिया, वनस्पति का एक जीवों के पहले इन जनरल लेने सामान्य कहेंगे। हाँ, सूक्ष्म के पर्याप्त में भी भटकने का काल अंतर्मूर्त लगातार, और अपर्याप्त में भी लगातार अंतर्मूर्त, फिर आपस में वो घूमता रहेगा पर्याप्त पर्याप्त में, तो असंख्यात लोक। तो वनस्पति का एक जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का, म के ऊपर रफर, अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है। ये अनंत काल कितना है? वनस्पति का एक की बात है ना, तो तीन समय कम असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। अब ये इन जनरल बात की, अब बादर की अलग करेंगे। बादर वनस्पति का एक जीवों के अंतरकाल बादर पृथ्वी का एक जीवों के समान है। बादर वनस्पति का एक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के अंतरकाल बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के समान है। ये बादर वनस्पति में प्रत्येक लिखना था क्या? है ना, आगे देखते। सूक्ष्म वनस्पति का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त और उन्हीं के अपर्याप्त जीवों के अंतरकाल सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त और उन्हीं के अपर्याप्त जीवों के समान है। ये तो असंख्यात पुद्गल पर निगोद की अपेक्षा वो सामान्य में ले ली उन्होंने, और यहाँ केवल बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म तो निगोद में ही होते हैं, पर्याप्त इसमें नहीं होते, प्रत्येक में तो होते ही नहीं है, प्रत्येक जो वनस्पति वो बादर ही होती है, परंतु बादर है वो प्रत्येक भी हो सकता है और निगोद भी हो सकता है। नहीं समझे? निगोद में बादर और सूक्ष्म दोनों है, और प्रत्येक वनस्पति में अकेले बादर ही है। तो यानी उन्होंने यहाँ निगोद की बात अलग से नहीं ली है। त्रसकायिक जीवों के, ये षटकायिक में से अभी त्रसकाय रह गया, त्रसकायिक जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। किसका? हाँ, पृथ्वी का, सूक्ष्म पृथ्वी का एक समान इनका भी है, एक एक में अंतर्मूर्त और दोनों मिलकर असंख्यात लोग। देखो, त्रस्काय की बात देख रहे थे। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। और उत्कृष्ट अंतर, तीन समय कम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर। पहले कितना लिया था पंचेंद्रिय में? 1000 सागर में। और यहाँ त्रस यानी सभी द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय सभी लिए हैं, तो इसलिए 2000 सागर में साधिक कर दिया। वहां 1000 में साधिक किए थे। इरियापथ कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि जो उपशांत कषाय जीव इरियापथ कर्म के साथ रहकर और नीचे उतरकर अंतर करके सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक ठहरकर पुनः उपशांत कषाय हो जाता है, उसे इरियापथ कर्म का जघन्य अंतरकाल उपलब्ध होता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर है। यानी शुरू में उपशम श्रेणी मान ली, उतर कर फिर इतना घूमा वो, और फिर अंत में जाके, क्योंकि 28 कर्मों की सत्ता वाला कोई एक एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय क्यों कहा? त्रस में शुरू करना है ना, त्रस का काल शुरू करना है, तो एकेंद्रीय में से आने वाला ही जीव लेना पड़ेगा। मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक्ता और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, अनंतर अनंतानुबंधी की विसंयोजन कर दर्शन मोनियों को उपशमा कर अनंतर प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान के हजारों परावर्तन करके अपूर्व उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक, सूक्ष्म उपशामक और उपशांत कषाय हुआ। ये हर एक, इतना डिटेल बताने क्यों बताया? क्योंकि एक एक अंतर्मुहूर्त हर एक में बिताया उसने। इसके इरियापथ कर्म की आदि दिखाई दी, फिर सूक्ष्म सांप्राय होकर इसका अंतर किया, किया हुआ किया। अनंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर काल का अंतर देकर, देखो ये आगे के सारे जो मिथ्या तुम्हें भटका हो, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ वो कितना भटकता है, वेदक के साथ 66 सागर हो जाता। तो ये इतना काल तो उसका नहीं घटित होता ना, इसलिए वो तो पूरा पंचेंद्रिय का त्रस का काल लिया उन्होंने। कहाँ गया? अंतर देकर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर सिद्ध हो गया, इसलिए क्षीण कषाय हुआ। हाँ, क्योंकि उसको त्रस की स्थिति पूरी करनी थी ना, इसलिए वे कहते हैं केंद्र में जाता तो क्या होता। ये अर्धपुद्गल कहाँ हुआ है? बहुत छोटा काल। हाँ हाँ, आपका कहना है अनंतानुबंधी का विषय, वो तो बहुत बार होता है, देव नारके में भी होता रहता है, जैसे सम्यक्त मिथ्या तो भी बहुत पल्ले के असंख्यात विभाग होता है ना, बार बार सम्यक जैसे गिर भी जाए और फिर दोबारा प्राप्त करे, वैसे अनंत आनंदी का विसंयोजन भी पल्ले के असंख्यात भाग बार कर सकता है। विशुद्धि बढ़ गई तो उसका विसंयोजन हो जाता है। करता है ये कहने की पद्धति है। इस प्रकार इर्यापद कर्म का अंतरकाल लब्ध होता है, अनंतर योगी और अयोगी होकर सिद्ध हुआ। योगी क्यों कहा, सयोगी क्यों नहीं कहा? ऊपर क्या लिखा है? जोगी अजोगी हो दूना, यानी वो सयोगी अयोगी। ठीक है। इस प्रकार गर्भ से लेकर 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्तकम उत्कृष्ट तत्रस स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध होता है। तपक कर्म का अंतर करो, इसको अत्तर हुआ। तपक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक करना 2000 सागर है, उसको समझा देंगे। यथा 28 कर्मों की सत्ता वाला कोई एक एकेंद्रीय जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त का होने पर विशुद्धि को प्राप्त होकर वेदक सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। हाँ, इसके तपक कर्म का प्रारंभ दिखाई दिया। अनंतर सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक उसके साथ रहकर, यानी तप कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो उसका अंतर किया। अनंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर प्रमाण काल में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक और संयम को स के ऊपर बिंदी एक साथ प्राप्त हुआ। इस प्रकार तपक कर्म का अंतरकाल लब्ध होता है। पुनः उपशम सम्यक्त्व के काल के भीतर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और एकेंद्रिय हुआ। इस प्रकार गर्भ से लेकर 8 वर्ष और 2 अंतर्मूर्तकम अपनी स्थिति प्रमाण चाहिए ना, तपक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है, स्थिति प्रमाण चाहिए ना? ठीक है, अपनी स्थिति तपकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर है, क्योंकि 28 कर्मों की सत्ता वाला कोई एकेंद्रीय संगी पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। अभी इसको सम्यक्त्व ही प्राप्त कराना है, यहाँ कोई तप कर्म की बात नहीं है ना क्रिया ये इर्यापद की, इसलिए मनुष्यों में उत्पन्न कराने की जरूरत नहीं थी। 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो विश्राम करके और विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। इसके क्रियाकर्म का प्रारंभ दिखाई दिया। अनंतर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक क्रियाकर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो उसका अंतर किया। अनंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रियाकर्म का अंतरकाल उपलब्ध होता है। पुनः पू दीर्घ नहीं चाहिए, ह्रस्व चाहिए। पुनः सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और एकेंद्रिय हो गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तकम अपनी उत्कृष्ट स्थिति क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध हुआ। इसी प्रकार त्रस पर्याप्तकों के भी जानना चाहिए। वहाँ जो साधिक कहा था उसके बदले भी काल बदलेगा, परंतु इतनी विशेषता है कि जहाँ पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर अंतरकाल कहा है, वहाँ पर 2000 सागर प्रमाण अंतरकाल कहना चाहिए। यानी मात्र पर्याप्त पर्याप्तों में त्रस में भटकता रहे तो 2000 सागर, बीच में अपर्याप्त करे तो साधिक हो जाता है, यानी पृथक्त्व कोटि से अधिक हो जाता है। अब त्रस अपर्याप्तों में, त्रस अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा, अपेक्षा करो अधिक्षा हुआ, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 80, 60, 40 और 24 भव प्रमाण संख्यात अंतर मुहूर्तों के समूह से 3 समय कम। ये समझ में आया? 80 वगैरह किसके लिए हो गए? द्विंद्रिय के, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय। तो इतने संख्यात अंतर मुहूर्त हो गए सब मिलकर, उसमें से 3 समय कम है, यथा एक जीव, सॉरी एक एकेंद्रिय जीव त्रस अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, वहां उत्पन्न होने के पहले समय में उपपाद योग के द्वारा, ये याद है ना, उपपाद योग, जन्म के पहले समय में जो योग होता है, औदारिक शरीर के निमित्त जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, उनके दूसरे समय में निर्जीर्ण हो जाने पर अधक कर्म का प्रारंभ होता है। पुनः तीसरे समय से लेकर 80, 60, 40 और 24 अपर्याप्त भव प्रमाण संख्या तंत्र मुहूर्तों के द्विचरम समय तक उसका अंतर रहता है। जो छोड़े उसको अंतिम समय में ग्रहण करेगा तो उसका वो पूरा अंतर सिद्ध हो जाएगा। पुनः अंतिम समय में उन्हीं निर्जीर्ण हुए कर्म स्कंधों के पुनः बंधकों प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल लब्ध होता है। यानी वो नौकर्म वर्गणा रूप से नहीं रहते, वैसे ही रहते तो हम उसका वो काल में गिनते, वो उनकी अन्य अवस्था हुई थी और जब इनकी स्थिति पूरी होने के अंतिम समय में फिर उस अवस्था को उन्होंने ग्रहण किया। अब आगे की योग मार्गणा, योग मार्गणा के अनुवाद से पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी जीवों के सब पदों का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम अंतर मुहूर्त है। ऐसा क्यों? हाँ, किसी योग में रहने का काल उसका वो तो अंतर मुहूर्त होगा उस अपेक्षा से भी। ये मनोयोग और वचन योग में ही लिया, काय योग में क्या कह सकते हैं? अकेले काय योग वाला होगा तो काय योग में रहने का उत्कृष्ट काल गिनेंगे कितना होगा? हाँ, एकेंद्रीय में जाता है ना, उसके तो काय योग ही है अकेला। तो देखो, इसी प्रकार काय योगी के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। औदारिक काय योगियों में इसी प्रकार जानना चाहिए, यो का ये करना। इतनी विशेषता है कि इनके अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय और अंतर मुहूर्त कम 22,000 वर्ष है। ये किसकी अपेक्षा ली उन्होंने? हाँ, पृथ्वी कायिक, पर्याप्त पृथ्वी कायिकों की जो मनुष्य नहीं लिया, मनुष्य लेंगे। हाँ, मनुष्य में आए, आपके प्रश्न का जवाब दो। उन्होंने पूछा मनुष्यों को क्यों नहीं लिया यहाँ, मनुष्यों की तो आयु लंबी है ना। हाँ, उनके तो काय योग में से वचन योग और मनोयोग पलटता रहेगा। मनुष्यों के लिए तो या किसी भी त्रस के लिए एक एक योग में रहने का वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त होगा। एक इंद्रियों में तो काय योग के अलावा दूसरा योग ही नहीं है, तो उनके तो कायम, तो उसमें जो वो लंबी आयु है, तो एक आयु लेने का लगातार बहुत सारी आयु लेने। हाँ, औदारिक कायोग कहा ना, अकेला कायोग कहा, तभी तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित किया था, उसमें से औदारिक कायोग लिया। तो औदारिक कायोग लिया तो एक भव समाप्त होने के बाद दूसरे क्या होगा वहां पर? हाँ, या तो कारमाण होगा या रुजुगति से जाएंगे तो औदारिक मिश्र होगा बीच में, ख्याल में ना। इसीलिए यहां भी कितना लिया, 22,000 वर्ष में से एक अंतर्मूर्त कम किया, वो औदारिक मिश्र वाला अंतर्मूर्त कम किया। तीन समय ऐसे भी तो घटाते ही है। 22,000 की आयु वाले किसी जीव ने पहले समय में जो नौकर्म पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, दूसरे समय में निर्जीर्ण हुए, उसकी अवस्था पलट गई, तो तीसरे समय में वो अंतर शुरू हुआ। अंतिम समय में ग्रहण किया तो द्विचरम समय तक अंतर रहा, तो पहले दो समय, अंत का एक समय, ये तीन समय घटाना, और औदारिक मिश्र का काल अंतर्मूर्त वो भी घटाना, बाकी रिमेनिंग काल उसका औदारिक काय योग रहा। तो इस औदारिक काय योग में यह अधक्रम घटित किया था यथा, ये समझा रहे। कोई एक तिर्यंच या मनुष्य बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तको में उत्पन्न हुआ, चार पर्याप्तियों से पर्याप्त होने पर अनंतर प्रथम समय में ये चार ही पर्याप्ति क्यों ली? एक केंद्रीय है ना जीव, चार पर्याप्ति होते हैं। किसमें होते, पर्याप्तों में होते क्या, एक अपर्याप्तों में होते? पर्याप्तियों की जो संख्या है वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के लिए समान होती है, उसकी पूरी नहीं होती है, स्टार्ट तो चार होती है। हाँ, प्राणों में वेरिएशन होता है। प्राण कितने होते हैं एक इंद्रियों के, पर्याप्तों के कितने और अपर्याप्तों के कितने? प्राण किसके पर्याप्त के अपर्याप्त के? पर्याप्त के, और अपर्याप्तों के तीन। हाँ, श्वासोश्वास नहीं है ना। हाँ, तो चार पर्याप्तियों से पर्याप्त होने पर अनंतर प्रथम समय में जो परमाणु ग्रहण किए उनके दूसरे समय में निर्जीर्ण होने पर अधक कर्म की आदि होती है। पुनः तीसरे समय से लेकर 22,000 वर्ष के द्विचरम समय तक उनका अंतर रहता है। अंतिम समय में पूर्वोक्त कर्मस्कंधों के बंधकों प्राप्त होने पर वे ही कर्मस्कंध बंधकों प्राप्त हुए अंतरकाल लब्ध होता है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय और अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष होता है। अब औदारिक मिश्र की बात करेंगे। औदारिक मिश्र का योगी के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। औदारिक मिश्र का जो अंतर्मूर्त है उतना ही, उसमें से तीन समय घटाना। यथा एक सर्वार सिद्धि विमानवासी देव रुजुगति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां उपपाद योग से प्रथम समय में जो नौ कर्म स्कंद ग्रहण किए उनके दूसरे समय में निर्जीर्ण होने पर अधक कर्म की आदि होती है। अनंतर तीसरे समय से लेकर अंतर होकर चाहिए, अनंतर होकर लिखा है ना, इति तदीय समय पहुड़ी अंतरम होदून। ये अनंतर के बीच में का न निकलना। अनंतर तीसरे समय से लेकर अंतर होकर पुनः दीर्घ अंतर मुहूर्त के द्वारा पर्याप्त हुआ। ये हमने देखा था, जो ऊपर से स्वर्गों से आते हैं, जितने ऊपर से आए उनको पर्याप्ति पूरी होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और नारकियों में से आते तो फटाफट करता है। क्या क्या देखो, अभी हम पढ़ रहे थे ना वाक्य, अनंतर तीसरे समय से लेकर, वहाँ क्या लिखा है? तो वहाँ क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, न निकालना। नहीं, हिंदी में छठी लाइन, वो तो हमने कर लिया, उनको मिल नहीं रहा था। ऊपर छठी लाइन है, जरा बोलो। हाँ, दो बार अनंतर है। पर्याप्त होगा। इस प्रकार उसके अंतिम समय में अंतर प्राप्त होता है। इस प्रकार अधक कर्मों का उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर मुहूर्त होता है। इरियापद कर्म और तपक कर्म का अंतरकाल कितना है? हाँ बोलो। औदारिक मिश्र में इरियापद कर्म का अंतरकाल, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। क्यों? हाँ, औदारिक मिश्र का योग। नाना जीवों की अपेक्षा कब पड़ेगा अंतर? सांतर मार्ग ना मत ढूंढो। देखो देखो, संयोग केवली जो है वो जब केवली समुद्घात करता है तो औदारिक मिश्र कब होता है? कपाट समुद्घात में। हा? पीछे तीन समय का अंतर जो है वो एक जीव की अपेक्षा, परंतु वो इरियापत, वहां इरियापत में कहां अंतर पड़ा? इरियापत तो चालू रखा। देखो, शंका, जिस प्रकार मोक्ष को जाने वाले जीवों का छह महीना उत्कृष्ट अंतर होता है, उसी प्रकार केवली समुदात करने वालों का भी छह महीना प्रमाण उत्कृष्ट अंतर क्यों नहीं होता? ये वर्ष पृथक तो जो बताया है वो तो समुद्घात करने वाले केवली की अपेक्षा वर्ष पृथक तो बताया। देखो, हमारे पास अभी दो दो क्राइटेरिया है, एक तो इरियापद कर्म और उसमें औदारिक मिश्र। तो इरियापद कर्म चालू रहे और औदारिक मिश्र हो जाए, ऐसे कौन से जीव है? तो केवली समुद्घात कपाट वाले जीव। तो कपाट वाले जीव, ऐसा हो सकता है ना, कोई एक समय तो कोई जीव ही नहीं किया उसने, और फिर वहां दूसरे कोई जीव आ गए, तो जघन्य अंतर एक समय होगा। हमने काल देखा था तो लगातार संख्यात को देखा था, वो काल की बात थी। अब यह अंतर देख रहे हैं, तो किसी जीव ने किया ही नहीं है केवली समुद्घात, तो कितना होगा? वर्ष पृथक्त्व अंतर पड़ेगा बीच में। किसी भी केवली ने समुद्घात ही नहीं किया, ऐसे कब बनेगा? ऐसे बन सकता है ना, नाना जीवों की अपेक्षा से बन सकता है, तो उसके लिए वर्ष पृथक्त्व काल कहा। उसमें अभी शंकाकार पूछ रहा है, हर छह महीने आठ समय में तो छह सौ आठ तो होते ही होते हैं, और आप इतना बड़ा अंतर कैसे कहते हो? अभी उसका समाधान देखेंगे। देखो, शंका फिर पढ़ते हैं। जिस प्रकार मोक्ष को जाने वाले जीवों का छह महीना उत्कृष्ट अंतर होता है, उन्होंने तो छह महीने आठ समय में जो हम देखा था 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छह महीने तो कोई जीव मोक्ष ही नहीं जाता, तो आठ समय बचे ना, तो आठ समय में 608 चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहता है, वह ऐसा अंतर यहाँ क्यों नहीं कहते हो? तो उसी प्रकार केवली समुदात करने वालों का भी छह महीना प्रमाण उत्कृष्ट अंतर क्यों नहीं होता? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात नहीं होता। समुद्घात करना धात हुआ है। यदि मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात होता तो छह मास प्रमाण अंतरकाल भी प्राप्त होता। यदि होता तो शंका, ये जहां जहां समुद्घात आया ना वहां ठीक करना। क्या क्या नहीं, आपका प्रश्न है गुणित कर्म शिक्य होता है क्या नहीं होता? ऐसा कोई नियम उसने उसमें नहीं बताया। वो गुणित और क्षपित, उसमें तो संख्या की बात है ना, हाँ। और यहाँ तो स्थिति की बात चल रही है, कितना स्थिति वाला कर्म है। शंका, जिन जीवों के केवली समुद्घात नहीं होता उनके केवली समुद्घात हुए बिना पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति का घात कैसे होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि स्थिति कांडक घात के द्वारा उक्त स्थिति का घात बन जाता है। उक्त दोनों कर्मों का एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। किसकी बात चल रही थी? औदारिक मिश्र में कर्म कौन सा लिया? ईर्यापथ, हाँ, और तप कर्म। ईर्या और तप कर्म की बात चल रही है। दोनों कर्म है, ईर्या पथ और तप कर्म। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। क्रिया कर्म का यानी औदारिक मिश्र बना रहे और उसका अंतर पड़े, हाँ? क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार कर्मण का योगियों के जानना चाहिए, हाँ? अंतरकाल कौन सी बात चल रही है यहाँ पर? देखो, पहले हम देखो औदार, आपका दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर देती हूँ। यह क्रिया कर्म की बात पूछी थी और अपना क्राइटेरिया चल रहा है औदारिक मिश्र में। औदारिक मिश्र में क्रिया कर्म किसका होगा? सम्य दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच का। हाँ, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पहले का काल। तो औदारिक मिश्र बना रहे और दोबारा वो क्रियाकर्म छुटकर फिर हो जावे, ऐसा तो संभव नहीं है। क्रियाकर्म हो सकता है परंतु उसमें अंतर नहीं हो सकता। वैसे हमने क्या देखा था कि जो औदारिक मिश्र वो तो एक समय वाला ही होता है एक जीव की अपेक्षा, तो वो बना रहे और फिर इरियापथ में अंतर हो जाए, ये ऐसा नहीं बन सकता ना। हमको कर्म का अंतर देखना है। क्रिया कर्म का नाना जीवन की अपेक्षा एक समय, उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व देखा था हमने। इसका अर्थ ख्याल है? नाना जीवन की अपेक्षा वर्ष पृथक्त्व किसको कहा? देखो, क्रिया कर्म का अंतरकाल किसमें बात चल रही है? औदारिक मिश्र में। वर्ष पृथक्त्व होगा यानी क्या? कौन से, किस किस कर्म के साथ? क्रिया कर्म के साथ, यानी अपनी भाषा में क्या कहें? तिर्यंच मनुष्य सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जन्मने वाले की बात है। तिर्यंच में यानी क्षयिक सम्यक्ति की बात करेंगे, और मनुष्य में तो देवों में से, नरक में से, वेदक के साथ भी आता है। तो फिर उसमें अंतर पड़ेगा ना, नाना जीवन की अपेक्षा वर्ष पृथक तक कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म से। औदारिक मिश्र की बात चल रही है। वो तो नहीं होगा। हाँ, अब आगे इसी प्रकार कर्मण का योगियों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर काल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर काल वर्ष पृथक्त्व है। एक जीव की अपेक्षा अंतर काल नहीं है। अधक कर्म तो 14वें गुण स्थान तक लेना है ना। उत्कृष्ट अंतर काल कैसे होगा वर्ष पृथक तो क्या? कर्मण का योग कब होगा? विग्रह गति में होगा। तो विग्रह गति में तो अधक कर्म का ग्रहण होता नहीं है। ग्रहण ही नहीं होता है। जब तक कर्मण का योग बना रहे तब तक तो औदारिक के परमाणु ही ग्रहण नहीं करता है। तो वर्ष पृथक तो कर्मण का योग और कहां पर है? केवली के समुद्घात में, प्रतर लोक पुराण में है ना, वहां कर्मण का योग है उसका। तो वहां नाना जीवों की अपेक्षा ही अंतर घटित होगा। एक जीव की अपेक्षा तो घटित ही नहीं होगा क्योंकि कर्मण का योग में तो वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। ग्रहण करेगा तो अंतर हुआ था और ग्रहण किया ऐसा कहेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा जैसे हमने अभी इरियापद पर घटित किया था, उसी अपेक्षा से यहाँ वर्ष पृथक तो कहा, यानी बीच में गैप पड़ गई तो एक समय की, और वर्ष पृथक में तो कोई ना कोई जीव वहां पर आएगा, उसकी अपेक्षा लेना। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। वैकिरेक का योगियों के सब पदों का अंतरकाल नहीं है। वैकिरेक मिश्र का, वैकिरेक का योग में कौन कौन से कर्म होते पहले हमने देखेंगे। वैकिरेक का योग में कर्म कौन कौन से है? अधक कर्म नहीं है, और कौन सा नहीं है? तप नहीं है, और ईर्ष्यापद भी नहीं है। तो कौन कौन से है? हाँ, प्रयोग, समवदान और क्रिया कर्म, ये है। तो कहते इन सब पदों का अंतरकाल नहीं है। वहां भी वैकिरिक का योग जब है उसका अधिक से अधिक काल कितना है? 33 अगर आप क्या कहते हैं वैकिरिक का योग, वो भी अंतर्मूर्त होगा ना, वहां भी मन वचन है। वैकिरिक का योग कितने काल तक चलेगा? हाँ, वो हाँ, एक अभी काय मार्गणा की अपेक्षा चल रही है ना अपनी, हाँ इसलिए उसको पदों का अंतरकाल नहीं है ऐसा कहा। यानी देखो हम क्या कहते हैं अन्य मार्ग, अभी हम काय योग अगर नहीं लगाएंगे, अकेले अगर हम देव गति की बात करेंगे तो देव गति में क्रिया कर्म का अंतर होता है। देव गति चालू रहे और फिर क्रिया कर्म था वो छूटकर मिथ्यात्व में जाए, फिर वापस आवे तो क्रिया कर्म का अंतर होता है। अब यहाँ क्या बताए, वैकिरिक का योग का काल एक अंतर्मूर्त है, उतने ही काल में वो मिथ्यात्व में जाए और वापस आवे इतना वो योग का काल बड़ा नहीं है, वो छोटा है, इसलिए इसका अंतर नहीं है कहा। देखो बाकी समवदान और प्रयोग कर्म का तो अंतर होता ही नहीं है, और योग मार्ग माना में वही योग है तो उसका योग का पलटना यानी योग तो है ही है वहां पर। वैकिरिक मिश्र का योगियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? देखो एक जीव की अपेक्षा तो अंतर घटेगा नहीं किसी भी कर्म में, मिश्र बनता रहे और उसको फिर वापस क्रियाकर्म था वो छूटा और फिर वापस आया, ऐसा भी नहीं होगा। तो नाना जीवों की अपेक्षा घटित हो सकता है। वैकरिक मिश्र यानी देव या नारक में जन्मना, तो अनेक जीव जन्मते हैं मान लेते हैं, तो कोई ऐसा समय आएगा कि एक भी जीव उसमें नहीं आया है। तो कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 12 मुहूर्त है, तो 12 मुहूर्त में कोई कोई जीव वहाँ जन्मेगा। ये व्यंतरों की मुख्यतः अपेक्षा मेरे ख्याल से। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल मास पृथक्त्व है। देखो मास पृथक्त्व कहाँ, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने वाले चाहिए। पहले तो सामान्य बात की थी, 12 मुहूर्त जब कहा था तो भवनत्रिक में तो मेजोरिटी जाएगी ना वहाँ पर या नरक में जाएगी मिथ्यात्व के साथ, या ऊपर भी मिथ्यात्व के साथ जाने वाले तो बहुत हैं। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, कहाँ पर, मनुष्यों में जन्मने वाले समय दृष्टि थे। औदारिक मिश्र के लिए वर्ष पृथक्त्व लिया था ना, और यहाँ मास पृथक्त्व लिए, ऐसा क्यों? देखो हाँ हाँ, भवनत्रिक मैक्सिमम है वो तो 12 मुहूर्त मिथ्या दृष्टि के साथ आया, परंतु इतने सारे असंख्यात समय दृष्टि है ना। हाँ, तिर्यंच इतनी सारी मेजोरिटी हो जाएगी और वो सारे समय दृष्टि मरकर वो देव में ही चले जाते हैं। और मनुष्य में आने वाले जो है, मनुष्य इटसेल्फ संख्यात है, अन्य गतियों में से यानी देव या नरक में से सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आ सकते हैं, तो उसमें तो अंतर पड़ेगा ज्यादा। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों के सब पदों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है, यानी इतने काल तक कोई जीव आहार का योगी नहीं करेगा, वो दाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, यानी यहाँ भी आहारक मिश्र का भी एक अंतर्मूर्त है, आहारक का योग का भी एक अंतर्मूर्त है, और उसमें भी मनोयोग वचन योग हो गए, तो उसमें वो उसका पलटना वगैरह नहीं होता। वेद मार्गणा के अनुवाद से, बाय द वे आहारक काय योगियों के कौन कौन से कर्म है, छह में से पहले दो तो है ही ना, प्रयोग कर्म और समवदान तो होते हैं, क्रिया कर्म है कि नहीं है, और तप कर्म है, इरियापद नहीं है, हाँ हाँ, अधक कर्म, हाँ अधक कर्म है। अभी वेद मार्गणा के अनुवाद से, हाँ अधकर्म का योग के काल में उसको पहले उसने छोड़े हुए कैसे लेना, आहार आहार वर्गणा का तो है ना, औदारिक औदारिक कहो या आहार वर्गणा अगर ले लेते हैं तो उसके भी है। अधकर्म की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, आहार वर्गणा ली थी क्या, औदारिक औदारिक रूप से रहना ऐसा लिया था हमने, छोड़ने पर औदारिक रूप से तो रहेंगे जो उसने पहले छोड़े थे, और आहारक का योग चल रहा है तो पुराने औदारिक तो छोड़ ही रहा है, ग्रहण ग्रहण तो आहार वर्गणा का है परंतु औदारिक का नहीं है, छोड़ने की बात चल रही है, छोड़कर उस रूप से रहेंगे। योग
योग है,
चलो ग्रहण ग्रहण है देखेंगे अभी कहीं विषय आए। पहले एक बार इस पर विषय आया था कुछ, उनका ऐसा है आहारक का योग के काल में औदारिक शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण तो होगा ही। कुछ बात हुई थी उसके बारे में, किसमें आई थी बात, कौन से विषय में आई थी, उसको दसवीं पुस्तक में नौवीं कहीं तो ये बात हुई थी, या कोई अन्य विषय में आई थी ये बात। वो कहाँ कितना काल अभी नहीं रिकलेक्ट हो रहा, याद आए तो बताऊंगी। नहीं नहीं, पर उसका उत्तर अपने को मिला था उसमें, वो कितना ग्रहण करता है कितना छोड़ता है उसके बारे में आया था कुछ, मुझे याद आया तो बताऊंगी मैं। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, ये अभी वेद मार्गना चल रही है अपनी, उसमें स्त्री वेद वालों की बात चल रही है, उसमें तो प्रयोग कर्म समवदान कर्म तो नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम सौ पल्ल पृथक्त्व है। ये स्त्री वेद की रहने की उत्कृष्ट स्थिति बताई। तब यानी स्त्री वेद रूप से रहने का उसका मैक्सिमम काल कितना है, तो सौ पल्ल पृथक्त्व, पृथक्त्व सौ पल्ल कहूं तो भी चलेगा। तपक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। ये तप कर्म ने संयम ग्रहण किया था और फिर नीचे आ गए और फिर दोबारा प्राप्त किया, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम सौ पल्ल पृथक्त्व है। हाँ, ये वो उस स्थिति का स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल। यथा 28 कर्मों की सत्ता वाला एक पुरुष वेदी या नपुंसक वेदी जीव, क्योंकि स्त्री वेद में लाना है ना उसको, अन्य वेद में से इसमें आया, स्त्री वेद वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। जहां ये वेद की बात है वहां भाव वेद की ही बात लेना। इसके तपक कर्म की आदि दिखाई दी, अनंतर सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक तपक कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और उसका अंतर किया। अनंतर सौ पल्ल पृथक्त में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। ये उसका काल आपने कहा ना, संयम वाले का जघन्य अंतर है, ये काल अंतर उसका सम्यक का काल। इसके तपक कर्म का अंतरकाल लब्ध हो गया, पुनः उपशम सम्यक तो काल में एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और पुरुष वेद वाला देव हुआ। एक समय में मरता है तो देव में जाता है, देव में जाता है, और उसका वेद भी बदलना है ना, अभी तो कहीं भी जाता है तो उसका वेद अभी पुरुष वेद होगा। इस प्रकार गर्भ से लेकर दो अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष अपनी स्थिति तपक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। ये तो अभी आसान है ना समझने में, नहीं समझे तो पूछ रहा हूँ। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कम सौ पल्ल पृथक्त्व है। यथा 28 कर्मों की सत्ता वाला पुरुष वेदी या नपुंसक वेदी एक तिर्यंश या मनुष्य देवों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, ये शुद्ध हुआ, ये वी पाहिजे, वी चाहिए उसको, वी शुद्ध हुआ, वो करना यो का, और वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। इसके क्रियाकर्म की आदि दिखाई दी, अनंतर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर उसका अंतर किया। हाँ, वहाँ सागरों की नहीं होते, पल्लियों की होती है। 55 पल्ले मैक्सिमम है वहाँ की, देवियों की मैक्सिमम आयु 55 पल्ले है, और यहाँ पृथक्त्व 100 लिए हैं, क्योंकि मनुष्यनी और तिर्यंचनी की भी उसमें हम ले सकते हैं। अनंतर 100 पल्ल्य पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, तो क्रिया कर्म का अंतर लब्ध हो गया। अनंतर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और पुरुष वेदी या नपुसक वेदी हो गया। वेद बदलने न, स्त्री वेद से अन्य वेद में चला गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त कम अपनी स्थिति क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है, उत्कृष्ट करना उसका। पुरुष वेद वाले जीवों के, पुरुष वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 100 सागर पृथक्त्व। तप कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल 100 सागर पृथक्त्व है। वही उसकी उत्कृष्ट, पुरुष वेद में रहने का उत्कृष्ट का। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक स्त्री वेदी या नपुसक वेदी जीव पुरुष वेद के साथ मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहाँ गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक्त और संयम की एक संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। इसके तप कर्म की आदि दिखाई दी, अनंतर सबसे थोड़े काल तक तप कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, तप कर्म का अंतर किया। तदनंतर 100 सागर पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, तप कर्म का अंतर प्राप्त हो गया। अनंतर साधारण गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और स्त्री वेद या नपुसक वेदी हो गया। इस प्रकार गर्भ से लेकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष काल से न्यून अपनी स्थिति तपक कर्म का उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी वो पुरुष वेदी की उत्कृष्ट स्थिति को यहाँ लिया। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 100 सागर पृथक्त्व है। यही अभी जो अभी हमने अप्लाई किया था। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला स्त्री वेदी या नपुसक वेदी एक जीव मरकर पुरुष वेद के साथ देवों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया और विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। क्रिया कर्म की आदि दिखाई दी, पुनः अति स्वल्प काल तक क्रिया कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, क्रिया कर्म का अंतर किया। अनंतर 100 सागर पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्रिया कर्म का अंतर प्राप्त हो गया। अनंतर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और स्त्री वेदी या नपुसक वेदी हो गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त कम अपनी स्थिति क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञानते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनवा। सदा देत हो। अश्विन भाई,